ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा ने जो हम बच्चों को एक विशेष गुण दिया है संतुष्टता का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय है संतुष्ट मियां ही बाप दादा के ताज की चमकती मणियां। आप सबने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार किसी राज्य में अकाल पड़ा और लोग भूखे मरने लगे, तो एक शहर का धनी आदमी बड़ा दयालु था। उसने घोषणा की कि प्रतिदिन बच्चों को एक एक रोटी बांटी जाएगी। तो शहर के सभी बच्चे एक बगीचे में इकट्ठे हो गए, रोटियां बंटने लगी। रोटी छोटी बड़ी थी तो बच्चे आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन एक छोटी कन्या थी जो साइड में चुपचाप खड़ी थी और अंत में बची हुई सबसे छोटी रोटी लेके वो अपने घर चली गई। अगले दिन फिर रोटियां बटी और इस बच्चे फिर एक बहुत छोटी रोटी आई जिसको लेके घर गई। लेकिन जैसे ही रोटी को तोड़ा तो उसमें से सोने की एक मोहर निकली। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, उस धनी आदमी की मोहर आटे में गिर गई होगी और ये आपकी रोटी में आ गई, तो आप ये मोहर लौटा के आओ। तो बच्ची उस धनी आदमी के पास कहती है कि रोटी में से ये मोहर निकली है, ये आप ले लो। तो वो धनी आदमी कहता है, नहीं, ये तुम्हारे संतोष का फल है। तो उसने कहा कि संतोष का फल तो मुझे तभी मिल जाता था जब मैं धक्का मुक्की से बच के रहती थी, इसलिए इसे आप ले लीजिए। तो बच्ची की इस ईमानदारी को, संतोष को देख के वो बहुत खुश हुआ और उसने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। तो कहने का भाव ये है कि संतोष अपने आप में एक इनाम है, अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ का लक्ष्य भी यही है कि हम सब हमेशा संतुष्ट रहें हर परिस्थिति में और दूसरों को भी संतुष्ट रखें। वास्तव में पुरुषार्थ की जो अंतिम स्टेज है वो संतोष ही है। कई लोग कहते हैं कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो फिर आगे कैसे बढ़ी। आदमी असंतुष्ट होता है तभी हाथ पांव मारता है, तभी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी कुछ प्राप्ति के लिए उसके मन में एक लक्ष्य होता है। अगर वो संतुष्टि हो गया तो आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसे कई लोग प्रश्न उठाते हैं। लेकिन लौकिक दुनिया के लोग इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। ज्ञानी तो आत्माओं को बाबा ने संतोष के साथ आगे बढ़ने सिखाया है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में कितना भी ऊंचा लक्ष्य रख ले, लेकिन पहला कदम वो संतुष्टता के साथ उठाए और संतोष के साथ ही वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाए तो एक दिन मंजिल को जरूर पा ले। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में सबसे पहले आत्मविश्वास हो, संतुष्टता हो, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हो, मन में कोई शंका संदेह ना हो। दूसरी बात ये है कि जो कोई भी काम है तो काम की एक शुरुआत होती है। जैसे किसी को 80 किताबें पढ़नी है, अगर वो सोचता रहे वो एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि असंतुष्ट आदमी सोचता ज्यादा है और करता कम। और अगर वो सोचता ही रहेगा तो काम होगा नहीं। इसलिए अगर वो 15 दिन में 5 किताब पढ़ लेता है तो उसके मन में एक आत्मविश्वास आता है कि मैं कर सकता हूँ। और अगर उसके मन में संतोष है, आत्मविश्वास, तो वो 18 घंटे भी काम करेगा। लेकिन इसके मन में संतोष नहीं है, वो तो ये चीज पकड़ेगा और फिर छोड़ देगा, करेगा ही नहीं। तो इसलिए यात्रा की शुरुआत भी संतुष्टता के साथ होती है, कितनी भी लंबी यात्रा हो, लेकिन आदमी कदम बाई कदम उसको पूरा करता है। जीवन लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, लेकिन संतोष के साथ हम उसकी शुरुआत करते हैं। जो हो गया उसको भी हम संतुष्टता के साथ देखते हैं, पीछे झपके देखते हैं तो हमें लगता है हमने जो किया उससे हम संतुष्ट, और हमें अब जो कर रहे हैं उससे भी हम संतुष्ट पहुंचेंगे तो भी हमें संतोष मिलेगा। लेकिन जो पीछे देकर संतुष्ट है उसकी नजर आगे मंजिल तक जाएगी कैसे? कई लोग कहें कि संतुष्ट हो जाए वो आलसी बन जाता है, अलबेला हो जाता है, चद्दर ओढ़ के सो जाता है। संतोष का ये भी मतलब नहीं है आलसी बनना, अलबेला बनना। संतोष मतलब है सकारात्मकता के साथ कर्मठ बनना, सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता, इन गुणों को लेकर के हम कर्म के बीज बोते हैं और जो निकलता है उससे हम संतुष्ट रहते हैं। किसी किसी को लगता है कि मैंने सच्चाई और ईमानदारी से जो बीज बोए उनसे जो फल निकले वो थोड़े थे, मुझे ज्यादा फल चाहिए। अब वो झूठ और बेईमानी के बीज बो के अगर ज्यादा फल पा भी रहा तो उसको संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए चीज थोड़ी है या अधिक है, उसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमारा मन सुकून में है और हमारा मन संतोष में है। पिछले दिनों प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने संतुष्ट आत्माओं की कई विशेषताएं, बाबा ने कहा संतुष्टता ब्राह्मणों का खजाना है, संतुष्टता ब्राह्मणों का श्रृंगार है और तुष्ट ब्राह्मणों का गुण है। फिर बाबा ने कहा कि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष दर्पण है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो अज्ञानी लोग वे भी आपकी संतुष्ट स्थिति को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं कि इन्होंने इतना त्याग किया फिर भी ये इतने पे, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम कुछ नहीं रहते। तो हमारी जो संतुष्टता है वो उन्हीं को परिवर्तन करने की प्रेर बनती है। जैसे यहाँ एक शिविर में कुछ लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा कुमारी बहने इनकी जेब तो खाली है पर ये खुश कितनी, बहुत प्रभाव पड़ा। तो भरी जेब वाले तो दुखी हैं और खाली जेब वाले खुश हैं क्योंकि उनकी जेब में संतोष रूपी धन भरा हुआ। फिर बाबा ने जो संतुष्ट आत्मा है वो सबके साथ स्वभाव संस्कार मिला करके चलेगी, किसी के भाव स्वभाव को देख के वो कभी नहीं घबराएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि जो संतुष्ट आत्मा है उससे सबका प्यार होगा, सब उसको अपने श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनाने की इच्छा रखेंगे, दिल का प्यार होगा, दिखावे का नहीं होगा। कुछ लोगों को राजी करने के लिए उनसे प्यार करना पड़ता है, लेकिन बाबा ने कहा संतुष्ट आत्मा से सबका दिल का जिगर का धुआं वाला प्यार होगा। और बाबा ने ये भी कहा कि संतुष्ट आत्मा को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे चांस दो तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले मैं भी आगे बढ़ूं। बाबा ने कहा नहीं, जो निमित्त आत्माएं हैं उनको अपने आप संकल्प आएगा कि इसको चांस देना चाहिए। तो संतुष्ट आत्मा ऑटोमेटिक बिना मेहनत बिना मांगे बिना पुरुषार्थ के चांसलर बन जाती है, अर्थात उसको बहुत सारे चांसेस ऑटोमेटिक मिलते ही रहते हैं। तो संतुष्टता एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सब संतुष्ट हैं? क्योंकि संतुष्टता के बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और बाबा ने कहा ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने वाली चार बातें, कई ब्राह्मण बच्चे अपने आप से संतुष्ट होते हैं, कई ब्राह्मण ब्राह्मणों से असंतुष्ट होते हैं, कई अपने संस्कारों से असंतुष्ट होते हैं और कई वायुमंडल और वातावरण से असंतुष्ट होते हैं। तो स्वयं से असंतुष्ट होने का अर्थ क्या है, उसकी लंबी लिस्ट है। कई लोग अपने शरीर से असंतुष्ट होते हैं, मैं बूढ़ा क्यों हूँ संगम युग पे, मैं बीमार क्यों हूँ, बाबा आपको अपना ही बनाना था तो कम से कम स्वस्थ तो शरीर रखते, कम से कम जवानी में तो आती, अब मैं बूढ़ा होके क्या सेवा करूं। कई लोग इसलिए भी असंतुष्ट है कि मैं कुरूप क्यों हूँ, मैं सुंदर होता, मैं पढ़ा लिखा क्यों नहीं हूँ। कोई अपनी जाति से भी असंतुष्ट होता है, मैं इस जाति में क्यों जन्मा। कई लोग अपनी गरीबी से असंतुष्ट होते हैं, संगम युग पे बाबा आपने मुझे गरीब क्यों बनाया। कोई बीमारी से, कोई अपने परिवार वालों से असंतुष्ट होते हैं, आपने सबको अच्छे अच्छे मित्र संबंधी दिए बाबा, ये मेरे घर के लोग ही ऐसे, फलाने के घर में 10 लोग ज्ञान में चलते हैं, घर में पाठशाला है, मेरे तो दूर दूर तक भी कोई रिश्तेदार ज्ञान में नहीं। तो कई बातों में बच्चे बाबा से कंप्लेन करते हैं, लेकिन बाबा ने इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बाबा ने कहा सबसे पहले आप ब्रह्मा बाबा को देखो, 60 साल की आयु में शिव बाबा ने प्रवेश किया। क्या ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जब मैं जवान था तब आप क्यों नहीं आए, 60 साल की आयु में प्रवेश किया और फिर भी वो कमाल करके दिखा दी जो कोई छोटी आयु वाला भी ना कर सके। फिर कहते हैं बाबा मैं बीमार क्यों, गरीब क्यों। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था बच्ची आप ना तो बीमार हैं और ना गरीब, क्योंकि आत्मा बीमार नहीं होती, आत्मा गरीब नहीं होती, आत्मा के जो 7 गुण है वो उसका धन है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति। तो ये धन तो सबके पास है, बाकी हाँ इस अंतिम जन्म में किसी किसी का गरीबी का रोल है। जैसे कोई ड्रामा होता है उसमें किसी का राजा का रोल होता है, किसी का भिखारी का रोल होता है, पर वो रोल कितनी देर का होता है। ड्रामा अगर 5 घंटे का है तो बस 5 घंटे का रोल है, पर वो व्यक्ति वास्तव में तो गरीब नहीं है। तो ड्रामा में अगर मेरा गरीबी का रोल है तो मैं गरीब नहीं हूँ लेकिन रोल गरीबी का है, बीमार मैं नहीं हूँ लेकिन रोल बीमारी का है, मैं तो आत्मा हूँ। तो अपने को रोल से जब डिटैच करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि रोल अलग है और मैं अलग हूँ। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि सदा सबका एक जैसा रोल नहीं होता है। आज जो अमीर है बाबा ने कहा वो कल गरीब बनने वाले, बाबा की योजना है, और गरीब बच्चों को बाबा अमीर बनाने वाला है, आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। तो उसमें भी खुश होना है कि बाबा मुझे अमीर बनाने आया है, अगर मैं अमीर होता तो गरीब हो जाता, अच्छा है मैं संगम युग पे गरीब हूँ, भगवान मुझे अमीर बनाएगा 21 जन्मों के लिए। तो खुद से असंतुष्ट नहीं होना। दूसरा, ब्राह्मण ब्राह्मणों से असंतुष्ट हो जाती और खास करके नजदीक वालों से। कई बार स्टूडेंट्स टीचर से असंतुष्ट हो जाते हैं, कई बार अपने मोहल्ले से कोई जाता है कहते हैं प्रोग्राम में गई मुझे साथ नहीं लेके गई, प्रोग्राम में गई मुझे बताया नहीं, मधुबन जाने का प्रोग्राम अकेले अकेले ने बना लिया, मेरा नहीं बनवाया। यहाँ भी आके असंतुष्ट हो जाते हैं, बाहर बाजार में गई मुझे साथ नहीं लेके गई। लेकिन हम किसी की छाया बन करके क्यों चले, हम अपने पांव पे खड़े होके अपने हिसाब से जाए ना। अगर वो अकेली जा सकती है तो हम भी तो अकेले जा सकते हैं, इसमें असंतुष्ट होने की क्या बात है? हो सकता है उसको हमारा साथ पसंद ना हो सकता है उस समय हम मौजूद ना हो सकता है उसने हमें बताया हो, हमने सुना ना हो। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट होते रहेंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे? और फिर बाबा ने कहा है कि ये जो ब्राह्मणों का परिवार है ये तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ परिवार, पूरे काल का परिवार आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसी विशेष आत्माएं, भगवान की चुनी हुई आत्माएं, वास्तव में जब हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता तब हम असंतुष्ट होते हैं। लेकिन स्वार्थ पूरा तो हो ही नहीं सकता, वो तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मणों के गुण देखो और उनसे निस्वार्थ संबंध रखो तो कभी असंतोष नहीं होगा। और तीसरा, अपने स्वभाव संस्कार से असंतुष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? रात को संकल्प करेंगे कि अभी जनवरी का मास आने वाला है तो सुबह 3 बजे उठेंगे। अब अलार्म लगा दिया 3 बजे का, लेकिन 3 बजे अलार्म बजा, ठंड बहुत लग रही है तो रजाई से हाथ निकाल के अलार्म बंद कर दिया। ठीक है, 3:30 उठेंगे, और करते करते 5 बज गए, गहरी नींद आ गई, तो फिर अपने आप पे गुस्सा आता है। देखा, मैंने सोचा क्या था, वो क्या है, पता नहीं मेरे से 3 बजे क्यों नहीं उठा जाता। कितने लोग 3 बजे उठ के बाबा के कमरे में जाते, एक मैं ही, तो अपने स्वभाव से असंतुष्ट हो जाते। फिर सोचेंगे कि आज रात को खाना नहीं खाएंगे, रात को खाना ना बहुत भारी कर देता है। अमृत वेले हल्के होके उठेंगे, लेकिन जैसे जैसे रात आएगी भूख लगेगी, और भोजन देखते ही फिर खाने को मन करेगा और फिर खाली, फिर भारी बन उठा नहीं जाएगा। फिर कहेंगे देखा मैंने क्या सोचा था, मैं रोज सोचता ही रह जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है, मेरे से क्यों नहीं रुका जाता है। तो अपने आप से असंतुष्ट। फिर कई बार प्रण करेंगे, जैसे आज क्लास में बाबा ने बोला ना, मुरली में सुबह बोला कि कम बोलो, इशारों से काम करो, तो अपने आप से प्रण करेंगे कि आज हम बिल्कुल मौन में रहेंगे। अब प्रण तो कर लिया, घंटे भर दो घंटे भर तो चलाया, तीसरे घंटे भूल गए, फिर बोल लिया और बाकी दिनों से ज्यादा ही बोल ली। फिर शाम को देखते कहते अरे आज क्या हुआ, क्या सोचा था, आज तो सोमवार था, मौन का दिन था, पर ये क्या होगा। तो अपने संस्कार जब अपने पे हावी हो जाते, जब अपने संस्कारों को जीत नहीं पाते, तो फिर असंतोष आता है, अपने पे गुस्सा आता है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, अपने आप पर भी गुस्सा करना ये भी पाप है। अपने को सताना, अपने को रुलाना, अपने को दुखी करना ये भी पाप के खाते में जाता है, आत्मघाती महापापी। तो अपने आप पे गुस्सा नहीं करना, लेकिन अपने आप को बल देना है। हम जो सोचते हैं वो होता क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा कमजोर है। आज जैसे किसी की गाड़ी का इंजन पुराना है, बैटरी डाउन है, और वो सोचता है ये 100 की स्पीड पे चले तो कैसे चलेगी। अब गाड़ी को पीटने लगे, मारने लगे, तो क्या वो 100 की स्पीड पे चल पड़ेगी? उसे इंजन बदलवाना पड़ेगा, बैटरी रिचार्ज करवानी पड़ेगी। तो अगर मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है, इसका मतलब बैटरी कमजोर है, इंजन कमजोर है, तो इसको पावर देनी पड़ेगी। और वो पावर कहाँ से मिलेगी? योग से मिलेगी। तो मैं प्यार से अपने आप को समझाऊं, अपने योग बल को बढ़ाऊं, अपने ज्ञान बल को बढ़ाऊं, अपनी दृढ़ता बढ़ाऊं, दिन भर बार बार अपनी चेकिंग करूं, और जैसे ही संस्कार हावी होने की कोशिश करे मैं सावधान रहूं कि मैंने इसको जीतने का लक्ष्य बनाया है, ये मेरे पे हावी कैसे हो सकता है। तो अपने संस्कार को भी प्यार से, ज्ञान से जीतना है, क्रोध नहीं करना है। और चौथी बात, किससे असंतुष्ट होते हैं? वायुमंडल, वातावरण। जैसे कई माता बहनें अपने घर वायुमंडल से असंतुष्ट हो जाती है, बहू ऐसी है सारा दिन रसोई में बर्तन खड़काती है, बच्चे ऐसे हैं, सारा दिन चिल्लाते हैं, मैं कैसे योग लगाऊं, शांति नहीं है, पड़ोसी ऐसे हैं। इस तरह से लोग वायुमंडल के बारे में शिकायत करते हैं। कई भाई लोग कहते हैं हमारे ऑफिस में हमारा साहब बड़ा विचलित करता है, हमको क्रोध करता है, शांत नहीं रहता है, ऑफिस के लोग बहुत अशांति मचाते हैं, तो ऑफिस में योग नहीं लगता है। यहाँ से मुरली सुन के जाते हैं, लेकिन ऑफिस में जाते ही वहाँ का वातावरण सारी मुरली बुला देता है, क्या करें? तो सबकी अपनी अपनी कंप्लेन होती है वायुमंडल की। मुझे याद है बाबा ने एक मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे वायुमंडल की और वातावरण की शिकायत करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जो मिश्री है वो आपकी रचना है, अगर मिश्री को आप कड़वे सी कड़वी जगह में भी डाल दो ना तो भी वो अपना मिठास का गुण नहीं छोड़ती। तो बाबा ने कहा क्या बच्चों में मिश्री जितना गुण भी नहीं? अरे बच्चे वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन बाबा ने आपको बता दिया कि आप शांति दूत, शांति के अवतार, तो वो आपकी शांति कैसे छीन सकते हैं? आप अपनी शांति को, क्या मिश्री जितनी भी अकल नहीं है जैसी, वो अपना मिठास नहीं छोड़ती, तो आप अपनी शांति क्यों छोड़ते हो? आप अपना ज्ञान क्यों भूल जाते हो? दूसरा, दादी गुलजार भी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करती थी कि कूड़े का ढेर हो और उसके ऊपर आप एक अगरबत्ती जला दो, तो अगरबत्ती कितनी छोटी सी है और कूड़े का ढेर कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो खुशबू फैला देगी। तो दादी भी कहती थी कि क्या हम बच्चों में अगरबत्ती जितनी अकल भी नहीं है? कूड़े के ढेर को भी हम खुशबू में बदल सकते हैं। तो भले ही हम ऑफिस में एक है, भले ही हम घर में एक, लेकिन घर का नेगेटिव वातावरण कितना भी अशांतकारी हो, अगर हम अपने स्वरूप में टिके हुए हैं तो हमसे वो वातावरण बदल जाएगा, ना कि वो हमको बदलेगा। और बाबा ये भी कहते हैं देखो कि ना भी घर अंधकार हो, कमरे में खूब अंधकार है, आपने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, कमरा कितना बड़ा है, क्या करेगी छोटी सी मोमबत्ती? सारे कमरे को रोशन कर देगी। तो बेशक वातावरण कितना भी अंधकारमय हो, पर आप मोमबत्ती बनो ना, अपने को जला के रखो, अपना प्रकाश फैलाते रहो, अंधकार ऑटोमेटिक मिट जाएगा, अंधकार की शिकायत मत करो, अपने को अखंड दीप बनाओ, चैतन्य दीप बनाओ, शाश्वत लो बनाओ, तो अंधकार ठहरेगा नहीं। तो मुख्य ये चार बातें हैं जो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करती हैं। नंबर एक, खुद से असंतुष्ट। नंबर दो, ब्राह्मण ब्राह्मण से असंतुष्ट। नंबर तीन, अपने संस्कारों से असंतुष्ट। और नंबर चार, वातावरण से असंतुष्ट। तो बाबा ने इन चारों को जीतने की विधि बताई, और फिर बाबा ने संतुष्ट आत्मा की एक सुंदर निशानी सुनाई। संतुष्ट आत्मा सदा माया जीत होगी। संतुष्ट आत्मा क्या होगी? सदा माया जीत होगी। अगर माया जीत नहीं बन पा रही है तो समझो कहीं ना कहीं हम असंतुष्ट है, क्योंकि असंतुष्टता शक्ति को अक्षीण कर देती है, और असंतुष्टता के कारण जब शक्ति क्षीण होती है तो माया को आने का मौका मिल जाता है। बाबा ने कहा था कि माया तो सबके पास आती है, लेकिन कई बच्चों में उसको परखने की शक्ति होती है तो वो संभल जाते हैं, और कईयों में परखने की शक्ति नहीं होती है तो माया वार कर देती है और वो घबरा जाते हैं। और परखने की शक्ति क्यों नहीं आती है? क्योंकि कभी याद करते हैं और कभी भूल जाते हैं, कभी बाबा का साथ पकड़ते हैं और कभी साथ छोड़ देते हैं, कभी श्रीमत पर चलते हैं और कभी अलबेले हो जाते हैं, जिसके कारण आत्मा कमजोर हो जाती है, परखने की शक्ति चली जाती है और मायावार कर देती है। और बाबा ने उदाहरण दिया सीता का। जब रावण आया, साधु का वेश रख के आया, भिखारी का वेश रख के आया, भिक्षा लेने आया, लेकिन सीता परख नहीं पाई। क्यों नहीं परख पाई? क्योंकि उसने राम को तो अपने से अलग कर दिया था। और राम को अपने से अलग क्यों किया? क्योंकि इच्छा मन में पैदा हो गई थी। तो कोई न कोई संसार की इच्छा, कोई न कोई संसार की तृष्णा, लालसा, कोई न कोई लगाव, कोई न कोई मोह, कोई न कोई आकर्षण मन के ऊपर हावी हो जाता है, बुद्धि को ट्रैप कर लेता है, मन को पकड़ लेता है। और जब वो मन को पकड़ लेता है तो मन भगवान से दूर हो जाता है, बस वो इच्छा आंखों के आगे घूमने लगती है। ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, ऐसे मिलनी चाहिए, वैसे मिलनी चाहिए, चाहे तो वो धन हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई खाने की चीज हो, वो आंखों के आगे, बुद्धि के आगे, मन के ऊपर छा जाती है। और जब वो चीज छा गई, वस्तु छा गई, एक रचयिता और एक रचना, तो हम रचना के पीछे भागने लगे तो रचयिता छूट गए। तो सीता की आंखों के आगे भी आकर्षण छा गया, सोने का हिरन। वो तो एक उदाहरण दिखाया है, इस दुनिया में सब छलावे वाली चीजें, सोने के हिरण की तरह से सब छलने वाली चीजें, किसी का रंग रूप हो, किसी का धन दौलत हो, किसी की वस्तु पदार्थ हो, या किसी का पद हो, किसी की विद्या हो, सब उस मृग की तरह छलने वाली चीजें। लेकिन हम छले जाते हैं, फिर पीछे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसमें परमात्मा से दूर हो जाते हैं, चीज भी नहीं मिलती, भगवान को भी खो देते और आत्मा कमजोर हो जाती है। और कमजोर आत्मा क्या करती है? परख शक्ति उसकी चली जाती है, क्या ठीक है, क्या गलत है, कौन ठीक है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और परिणाम क्या निकलता है? मायाधीन हो जाती है। तो सीता इच्छा के विभूत हुई, इच्छा के वशीभूत के भगवान को भूली, भगवान को भूली तो कमजोर हुई, कमजोर हुई तो परखने की शक्ति चली गई, और परखने की शक्ति चली गई तो माया ने पूरी तरह को हब कर लिया। तो जो सर्व प्राप्ति स्वरूप स्वीकारने वाली बन गई, थी योगी थी वो वियोगी बन गई, जो नजदीक थी वो दूर चली गई, और फिर उसे शोक वाटिका के दुख उठाने पड़े। बने का इसका एक ही समाधान है कि सदा कंबाइंड रहो, कंबाइंड रूप में कभी माया नहीं आ सकती। बाबा ने कहा कभी काम आया, कभी क्रोध आया, कभी लोभ आया, एक एक को भगाने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए एक एक को मत भगाओ। बीज रूप स्थिति में टिक करके कमजोरियों के बीज का नाश कर दो। बहुत सुंदर लाइन बाबा ने बोली, बीज रूप स्थिति में टिक जाओ और जो कमजोरियों बीज है उजाल, भीतर में जो विकारों के अंश हैं, विकारों के बीज, वो बार बार उभरते रहेंगे। जैसे घास काट ली फिर निकल आई, पेड़ की डाल ली फिर निकल आई, इधर से निकल आई, उधर से निकल आई, और अगर हम जड़ पे जा डाले तो खत्म, कभी नहीं निकलेगा। तो भीतर में कमजोरों के जो जड़ है वो कैसे है? बीज रूप स्थिति टिको। तो बीज रूप स्थिति कौन सी है? मैं आत्मा बीज हूँ और शिव बाबा जगत का बीज, और मुझे बीज का जो घर है वो ऊपर बाबा का घर और मेरा घर एक ही। तो मैं आत्मा बीज रूप स्थिति में सुप्रीम बीज के साथ, सुप्रीम बीज के सामने हूँ, और सुप्रीम बीज शक्ति की किरणें आ रही हैं, वो मुझ बीज के ऊपर पड़ रही हैं, और जैसे मेरे भीतर की कमी कमजोरियां सब जल करके राख हो। बार बार इस दृश्य को विजुअलाइज करो, सुप्रीम बीज की पावर मुझ बीज पे पड़ रही है और मेरे भीतर जो भी कुछ पुराना है, जो भी अंश है, वंश है, जैसे वो नष्ट हो रहा है। बाबा ने कहा जैसे बीज को देते हैं तो वो उगता नहीं, तो आप भी अपने भीतर जो बुराइयों के बीज पड़े हुए उनको योग अग्नि से भून डालोगे तो वो दोबारा उगेंगे नहीं। और बाबा ने माया की परखने की शक्ति है वो बहुत तेज है। कैसे तेज है, उसको पता है कि कब वार करना चाहिए, कब कमजोर। और जैसे मधुबन में है तो माया नहीं आएगी उसको, या तो ये पूरा कवच पहन के बैठे हैं, शुद्ध खान है, शुद्ध वातावरण है, सारा दिन ज्ञान गंगा रहती है, उसमें गोते लगाते रहते हैं, तो यहाँ तो वो आएगी नहीं। लेकिन जैसे मधुबन के से बाहर निकले, स्टेशन तक पहुंचे, तो वो के पीछे चलती है देही है कि अब ये कवच से तो प्यार करेगी। स्टेशन पे जाते ही कोई चीज दिखेगी, कोई व्यक्ति दिखेगा, उसके बारे में सोचने लगेंगे ये कौन है, कैसा है, ये क्या है, ये ट्रेन आई है, ये किधर जा रही है, इस पे ये लिखा हुआ है, ये लोग तो उसमें चढ़ गए, हमारी तो अभी तक। तो ज्ञान ध्यान मुरली वो सब का सब भुला देगी, अपने लाल बसा लेगी। तो उसकी परख शक्ति बहुत तेज, जब अभी नहीं आई उसको पता है यहाँ तो ये मजबूत, तो यहाँ के क्या बने होंगे। और जैसे ही स्टेशन गए, ट्रेन गई, उसके बाद घर गए, तो वो पीछे पीछे थी और वो बिल्कुल आकर के सामने वार करती है। कई तरह से वार करेगी वो, किसी वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, किसी घटना के रूप में, किसी पुरानी स्मृति के रूप में, और फिर वो ऐसा बार बार करेगी कि आत्मा जो बहुत शक्ति भर के गई थी यहाँ से, उसको भी लगेगा यानी क्या हुआ, मधुबन में तो मैं बहुत अच्छी थी, एक भी पसंद नहीं आया, अब पता नहीं क्या हुआ। तो यानी का मन परखने की शक्ति बहुत तेज है, और आपकी परखने की शक्ति कमजोर है, आप उसको नहीं परख पाते, पर वो आपको परख लिए कि ये कमजोर और अब मैं बनू। तो बाबा ने कहा इसको उलट करो, आप अपनी परख शक्ति को बढ़ाओ, माया आ रही है और मुझे सावधान रहना है, और मुझे सामना करना है, और मुझे हार नहीं खानी है, और मुझे विजय करनी, क्योंकि बाबा ने कहा है विजय आप ब्राह्मणों का जन्म शक्ति, इसलिए मुझे विजयी बनना है। बार बार को स्मृति दिलाओ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा, मेरी हार हो नहीं सकती। और फिर बाबा ने कहा कि असंतुष्टता का एक कारण है अपवित्रता, और अंदर में अपवित्रता का अंश भी है, तो वो आत्मा को असंत कर देती है, क्योंकि हमारा जो कुल धर्म है वो संपूर्ण पवित्रता है। जैसे भोजन में एक छोटी भी कंकर आ जाए तो परेशान कर देती, तो संपूर्ण पवित्रता में अगर कंकर जितनी भी अपवित्रता आ जाती है तो मन संतुष्ट पाता है। बाबा ने कहा पवित्रता आप ब्राह्मणों का मन वचन कर्म की पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संकल्प स्वप्न संबंध संपर्क संपूर्ण पवित्रता। श्वास है तो जीवन है, और श्वास नहीं है तो जीवन नहीं। तो अगर पवित्रता है तो ब्राह्मण का श्वास है, और पवित्रता नहीं है तो समझो श्वास ही गुम हो गया। बाबा ने कहा पवित्रता 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है, पूज्य पद का आधार भी पवित्रता है, बाप और बच्चे के मिलन का आधार भी पवित्र भी है, संगम युग की सर्व प्राणियों का पवित्रता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे पवित्रता रूपी वरान को हठ से प्राप्त करते हैं। जो नेचुरल चीज है उसके लिए हठ क्यों, जो आपकी अपनी चीज है उसके लिए मेहनत क्यों। बाबा ने कहा अपवित्रता रावण का श्राप है, आप श्राप नाम सुन के ही कैसा लगता है? श्राप कोई चाहता है क्या? मुझे श्राप मिले कोई नहीं चाहता, श्राप से सब बचने की कोशिश करती है। तो ये रावण का श्राप, और दूसरा पवित्रता बाबा का वरदान। रावण और बाप अपना, तो पराए की किसी चीज को हाथ लाया जाता है क्या? और श्राप जहां उधर जाया जाता है क्या? वरदान भी अपना और देने वाला भी अपना। तो बाबा ने कहा पवित्रता कायम तब रहती है, उसके लिए पहली बात वरदाता और वरदानी दोनों का समीप का अर्थ दो। वरदाता और वरदानी तो कंबाइन, वरा और वरदानी सदा समीप रही, निरंतर स्नेही रही, कंबाइंड रही। और बाबनी का अगर वरदाता से संबंध चला जाता है तो ऐसे ही है कि पवित्रता रूपी सुहाग चला जाता है। ये पवित्रता हमारा सुहाग, तो ये सुहाग चला जाता है अगर वरदात्री मन बुद्धि की दूरी हो जाती है। तो बाबा ने कहा इस वरदान को नेचुरल रूप में अपनाओ। नेचुरल रूप के लिए बाबा ने क्या बताया? एक स्वमाला रखो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, चारों युगों में अपनी पवित्रता को याद करो। जब परम धाम में थे, अनादि काल में थे, तो बाबा ने कहा परम धाम में बाबा के सबसे नजदीक है और आपकी आत्मा रूपी में से आपकी ज्यादा थे। तो अनादि काल में भी संपूर्ण पवित्र एक समान थे, और जब आदि काल में आत्मा करके आई सतयुग में तो भी कितनी प्योरिटी थी। इस देश का नाम ही भारत अपना प्रकाश, इसमें रहने वाला हर व्यक्ति प्रकाशमान था, सबके सिर पे दो ताज थे, किसी धर्म की ऐसी अवस्था नहीं बनती। बोधी क्रिश्चियन मुस्लिम कोई दो ताज वाले नहीं बनते। जन्म भी पवित्रता से, योग बल से, प्रकृति पवित्र। तो आदि काल में भी आपने पवित्र थे, मध्य काल में जो आपकी यादगार है कितनी पवित्रता से पूजा होती है। किसी धर्म की महान आत्माओं के ऐसे मंदिर नहीं बनते, ऐसी ड्रेस नहीं बनती, ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। एक एक देव आत्मा का मंदिर इतने नियम है, पुजारी भी नहा धोके तब पूजा करता है, तब छूता है, कितने भव मंदिर। तो ये भी आपकी पवित्र का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ही उनकी पूजा भी बड़ी उच्च कोटि की होगी। और फिर संगम युग में डायरेक्ट पवित्रता के सागर से पवित्रता का वरदान मिलता है, उसकी संपूर्ण पवित्रता वर्षे के रूप में मिलती है। किसी धर्म पिता या उसके फॉलोवर्स के पास इतनी प्योरिटी नहीं होती है। आप तो हो ही पवित्रता के अवतार, आप अपनी पवित्रता के बल से सारे विश्व को पवित्र बनाने वाले हो। जैसे दुनिया में फायर ब्रिगेड वाले होते तो उनका काम क्या होता है? आग बुझाना, उनमें से कोई आग लगा नहीं सकता। ऐसे ही हम सब हैं पवित्रता की रोशनी फैला, हमारे में से कोई भी अपवित्रता का अंधकार फैला नहीं सकता। अपने कर्तव्य के ओपोजिट हम कुछ भी नहीं कर सके। तो बनी का अपने स्वमान को बार बार याद करो, मैं कौन हूँ? परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझे अपवित्रता छू नहीं सकती है, मैं पवित्रता का वरदानी हूँ। मेरी बनी का पवित्र दृष्टि
की आंखों की रोशनी है।
पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र कर्म ब्राह्मणों का धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मणों की मर्यादा है। सबसे पहले बताया पवित्र संकल्प ब्राह्मणों का भोजन। अगर कोई अशुद्ध भोजन खाता है तो बीमार पड़ता है। तो मेरा एक एक संकल्प जो मैं भोजन के रूप में बुद्धि को दे रहा हूँ, मेरा एक एक संकल्प एकदम सात्विक निखालस अडल्ट्रेशन नहीं है, उसमें मिलावट नहीं। आजकल बाजार में खाने पीने की मिलावटी चीजें मिलती है, तो दुनिया के जो विचार है वो मिलावटी है, लेकिन एकदम शुद्ध विचार मुरली के विचार, कितनी लंबी मुरली बाबा देते हैं, उन विचारों में बार बार रमण करना, ये ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी। अगर पवित्रता नहीं तो समझो आंखों में रोशनी नहीं। तो आंखों की रोशनी किसे है? प्योरिटी से है। और मेरी आंखों के माध्यम से वो प्योरिटी मैं जिसको भी देखता हूं उसमें जाती है। और पवित्र कर्म ब्राह्मणों का धंधा है। हम कोई ऐसा धंधा नहीं कर सकते जिसमें अपवित्रता हो। हमारा हर कर्म पवित्रता को प्रमोट करने वाला है। हम चाहे इन हाथों से कुछ भी करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन हर कर्म में पवित्रता की खुशबू है। और पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मणों की मर्यादा है। किसी के भी संपर्क में आते हैं तो पवित्रता के साथ, ऐसा नहीं कि किसी के आकर्षण में आ गए, किसी से पलड़ा झुक गया, लगाव हो गया, कहीं से पलड़ा उठ गया, घृणा हो गई, किसी से बोलचाल बंद कर दी, किसी से बहुत बोल लिया। मर्यादित, हर कर्म मर्यादित, संबंध में भी आएंगे, संपर्क में भी आएंगे, सबके साथ संबंध संपर्क रखना है, परिवार में, समाज में, व्यवहार में, लेकिन पवित्रता के साथ, मर्यादा के साथ। अति सर्वत्र वर्जयते, अति नहीं होनी चाहिए, मर्यादित होके सारे काम करनी है। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों की मर्यादा है। तो जब बाबा की बताई इस परिभाषा पे हम पूर्ण उतरते हैं तो जीवन में संतुष्टता आती है, लेकिन जब इस परिभाषा पे पूर्ण नहीं उतरते तो मन असंतुष्ट होता है। खाता तो है ना, बाबा क्या कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा क्या कहता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा जो संतुष्ट मणि है वो बाप दादा को अति प्रिय है, बाप दादा के ताज में चमकती हुई मणियां है। और बाप दादा अपनी एक एक संतुष्ट मणि को देख करके प्रसन्न होते हैं। वाह मेरी संतुष्ट मणियां, संसार में जहाँ चारों तरफ आत्माएं असंतुष्ट, अज्ञानी लोग अभी अभी संतुष्ट हुए, अभी अभी असंतुष्ट हुए, अभी अभी धूप अभी अभी छाया, इस प्रकार की उनकी मन स्थिति होती है। कुछ मिलने का अनुभव हुआ तो खुश हो गए, और कुछ चले जाने का अनुभव हुआ तो असंतुष्ट हो गए। लेकिन बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे हर बात में संतुष्ट, कुछ चला गया तो भी संतुष्ट, कुछ आ गया तो भी संतुष्ट, क्योंकि हमारी संतुष्टता सांसारिक चीजों के आने जाने पे आधारित नहीं। हमारी संतुष्टता हमारा मूल गुण है, हमारा श्रृंगार है, हमारा गहना है, बाप की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, वरदान है। तो किसी आने जाने से इस संतुष्टता का कोई कनेक्शन नहीं, ये तो आत्मा की अपनी निजी चीज है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकती। तो जब ऐसी संतुष्ट मणियों को बाबा देखते हैं तो बाबा को नाज होता है, विश्व में किसी के ऐसे संतुष्ट मुहूर्त बच्चे नहीं है जो बाबा के। तो बाबा ने कहा हमेशा इस स्वमान में रहो कि मैं प्यारे बाप दादा के मस्तक में जगमगाई हुई कौन हूँ, संतुष्ट मणि। बातें तो आएंगे संतुष्ट करने वाली, लेकिन मुझे उन बातों के अधीन नहीं होना, मुझे सामना करना है। जब कोई कामना नहीं तो सामना करने की शक्ति रहती है, कामना ही अपवित्रता है। तो कामना को अंश सही समाप्त करके मैं सामना करने का समय रहा, ताकि हर हाल में ऐसे नहीं शांत रहता हूँ वहां संतुष्ट हो जाता हूँ, यहाँ तो मन होता है वहाँ नहीं होता है। बाबा ने कहा हर स्थान पे हर प्रकार के लोगों के बीच हर समय संतुष्ट रहना यह उपलब्धि, कहीं है और कहीं नहीं है ऐसा नहीं। हर समय हर हाल हर परिस्थिति में संतुष्ट, ऐसी संतुष्ट मणिया बताकर वो अति प्रिय है। तो हम सब कौन है, आज से हमारा नाम क्या होगा, संतुष्ट मणिया।